24 अप्रैल दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। ईरान ने अमेरिका को किया आगाह कि वो परमाणु समझौते से पीछे न हटे।
इन दिस वॉर देयर कैन बी नो विनर्स एंड लूजर्स, वी एक्सपीरियंस दैट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिस्कशन, नोबडी वन।
जोधपुर में आसाराम बापू के मुकदमे पर फैसला कल जेल में ही सुनाया जाएगा।
ये अपना पुराना जोधपुर शहर जो पुराना ओल्ड सिटी है, चारों साइड से खुला, तो ऐसे रूटीन में भी जब तारीख कृषि होती है तो हजारों भाविक आ जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर हमको मेंटेन करने में बहुत तकलीफ आती है।
सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर याद करेंगे 2003 में सेंचुरियन में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी पारी को। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार रजनीश कुमार से। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को नहीं तोड़े। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते पर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात कर रहे हैं। इस बातचीत के ठीक पहले रूहानी का बयान आया है। रूहानी ने कहा कि अगर ट्रंप ने परमाणु समझौते को ख़त्म किया तो इसके बुरे परिणाम होंगे। ईरान को इस समझौते के जरिए कई आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली है। हालांकि रूहानी ने यह साफ नहीं किया कि ट्रंप परमाणु समझौता को ख़त्म करेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया में क्या कदम उठाएंगे। हसन रूहानी ने कहा, हम हमेशा अपने वादों को लेकर प्रतिबद्ध रहे हैं, लेकिन कोई हमारे राष्ट्र और समझौते को खारिज करना चाहता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो इसके बुरे परिणाम भुगतेंगे। ये थे ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा मजबूती से उठाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद से द्विपक्षीय संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। 27 अप्रैल को पीएम मोदी चीन जा रहे हैं। चीन ने मोदी की यात्रा पर कहा है कि भारतीय पीएम और चीनी राष्ट्रपति किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बल्कि भरोसा बहाल कर द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाया जाएगा। जर्मनी के सरकारी निगरानीकर्ताओं ने देश की सेना पर पैसे और संसाधन बर्बाद करने का आरोप लगाया है। निगरानीकर्ताओं का कहना है कि ऐसा तब हुआ जब नेटो ने रक्षा खर्चों में बढ़ोतरी का दबाव बनाया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब तैयारी के कारण रक्षा खर्चों में अतार्किक बढ़ोतरी हुई। कीनिया में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। रेड क्रॉस का कहना है कि भारी बारिश के कारण कीनिया में 3 बांधों में पानी नियंत्रण रेखा के ऊपर पहुँच गया है। निचले इलाकों में रह रहे हजारों लोगों को बाढ़ की चपेट से बचने के लिए अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। रेडक्रॉस का कहना है कि पिछले 3 हफ्तों में करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान अमेरिका में तनाव और मध्य पूर्व में जारी अस्थिरता के बीच कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $75 तक पहुँच गई। यह पिछले 3 सालों में सबसे ऊंची कीमत है। तेल की कीमत में बढ़ोतरी ईरानी तेल पर नए अमरीकी प्रतिबंध के डर के कारण हो रही है। अगर अमरीका ईरान पर कोई नया प्रतिबंध लगाता है तो इसे तेल की आपूर्ति बाधित होगी। ओपेक और दूसरे तेल उत्पादक देशों ने 2017 में तेल उत्पादन को नियंत्रित करने पर सहमति बनाई थी और इसके बाद से तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। इंडोनेशिया की एक अदालत ने संसद के पूर्व स्पीकर सेत्या नोवांतो को भ्रष्टाचार के मामले में 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय पहचान पत्र नाम की योजना में घपला करने का उन पर मामला चल रहा था और अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। नोवांतो की गिनती इंडोनेशिया के प्रभावी नेताओं में होती थी। यह $70 लाख के घपले का मामला था। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से लगी सरहद पर प्रचार तंत्र के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने भी सोमवार को ऐसा ही कदम उठाया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उसके साथ किए गए परमाणु समझौते से पीछे न हटे। ये चेतावनी राष्ट्रपति ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच इस मुद्दे पर होने वाली बातचीत से कुछ घंटे पहले आई है। ईरान ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप समझौता तोड़ने की अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। इस समझौते में ईरान के अपना परमाणु कार्यक्रम त्यागने के बदले उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को कम कर दिया गया था। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ संदीप सोनी।
ईरान ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता। ईरान ने अमेरिका को यह चेतावनी ऐसे समय दी है जब राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विमर्श करने वाले हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कह दिया है कि अमेरिका ने यदि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौता खत्म किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस समझौते के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था, जिसके बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी थी। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने कहा कि परमाणु का मामला कोई खेल नहीं है।
इस दुनिया में कोई विजेता और कोई हारा हुआ नहीं हो सकता। परमाणु समझौते पर विचार विमर्श के दौरान हमने यही अनुभव किया था और अब हमने एक दूसरों को दाव देने की कोशिश की तो फिर ऐसा ही होगा। विफलता के भय से आप इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद होना जरूरी है, लेकिन अमेरिका इस समय जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उससे कुछ और ही नतीजे निकल सकते हैं।
ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने इससे एक कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यदि परमाणु समझौते से पल्ला झाड़ा तो ईरान परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी से हट सकता है।
ये दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अलग अलग रूप में बाधाएं सामने आ रही हैं और अब ये अपने चरम पर पहुंच गई हैं। परमाणु अप्रसार संधि से यदि ईरान के राष्ट्रहितों की पूर्ति नहीं होती है तो उसे हक है कि वो इस संधि को मानने से इनकार कर दे। ईरान के पास तीन विकल्पों में ये भी एक विकल्प है। इस मुद्दे पर ट्रंप के साथ ईरान अपना धैर्य खो रहा है।
परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का मकसद परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना है। ईरान ने वर्ष 1970 में इस संधि पर दस्तखत किए थे, जबकि अमेरिका और विश्व की अन्य ताकतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते पर ईरान ने 3 वर्ष पहले ही दस्तखत किए। इस समझौते पर दस्तखत करने वाले अन्य देशों में रूस, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। अमेरिका को छोड़कर इन सभी का कहना है कि वो चाहते हैं कि ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौता कायम रहे।
अमेरिका को ईरान की चेतावनी। अमेरिका में ट्रंप सरकार H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों के लिए वर्क परमिट को समाप्त करने की योजना बना रही है। ट्रंप प्रशासन पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के समय के उस प्रावधान को खत्म करने जा रहा है जिसके तहत H-1B वीजा धारकों के पति या पत्नी को वर्क परमिट जारी हो जाता था। यानी अब पति के पास अगर H-1B वीजा है तो पत्नी को काम करने की अनुमति नहीं होगी। वॉशिंगटन से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
सन 2015 में बराक ओबामा प्रशासन ने H-1B वीजे पर अमेरिका में काम करने वाले पेशेवर लोगों के पत्नी या पति को भी H-4 वीजे के तहत काम करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस H-4 वीजे पर रहने वाले लोगों पर अमेरिका में किसी प्रकार की नौकरी करने पर फिर से प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अमेरिका के अप्रवासन विभाग के डायरेक्टर फ्रांसिस सिस्ना ने अमेरिकी सेनेट की जुडिशरी कमेटी के अध्यक्ष सेनेटर चक ग्रासली को इसी महीने एक खत लिखा जिसमें H-4 के तहत दिए जाने वाले वर्क परमिट को खत्म करने की बात कही गई है। खत में कहा गया है कि इस सिलसिले में अगले चंद महीनों में नए नियम लागू हो जाएंगे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कदम अमरीका में अप्रवासन की प्रणाली को सुधारने की ओर की जा रही कोशिश का हिस्सा है। H-4 के अलावा अप्रवासन विभाग लॉटरी सिस्टम के तहत H-1B वीजा दिए जाने की नीति को भी खत्म करने जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि H-1B वीजा खास पेशेवर लोगों को जांच परख के दिया जाएगा, जिससे जो कंपनियां विदेशियों को इस श्रेणी में नौकरी दें वो ये सुनिश्चित करें कि उसी खास पेशेवर की श्रेणी में ही कर्मचारी काम करें। ट्रंप प्रशासन ये कहता रहा है कि H-1B वीजे के तहत वीजा हासिल करने वाली कुछ कंपनियां इस वीजे का दुरुपयोग करती हैं। प्रशासन ये कहता रहा है कि H-1B वीजे के दुरुपयोग के कारण अमरीकी कर्मचारियों के बजाय विदेशी कर्मचारियों को नौकरियां दे दी जाती हैं। अप्रवासन विभाग का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन यानी अमरीकी चीजें खरीदें और अमरीकियों को नौकरी दें की नीति पर अमल करते हुए अमरीकी कर्मचारियों के हित के लिए H-1B और H-4 वीजे के नियमों में सख्ती करने वाले ये कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल ही H-4 वीजे के तहत काम करने की इजाजत को खत्म करने के संकेत दे दिए थे। फ्लोरिडा में रहने वाले भारतीय मूल के अप्रवासन मामलों के वकील अश्विन शर्मा इस नए नियम को गलत मानते हैं।
वर्कफोर्स को वो डिनाई कर रहे हैं और उनकी जरूरत है इस देश में। ये काफी असर पड़ेगा क्योंकि फैमिली में यूजुअली स्पेशली भारत में यूजुअली जो एप्लीकेंट्स हैं, जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, वो भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को के साथ शादी करते हैं। हमारा कल्चर यही है। सो यू नो जब आधी फैमिली कमा नहीं सकती तो ये काफी बड़ी मुश्किल है। और ऑफ कोर्स अगर वो नहीं काम कर सकते तो नहीं काम कर सकते, दे वो मूव ऑन। जो H-1B एप्लीकेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अकेले काम करेंगे, लेकिन फैमिली का जो प्रोग्रेस है वो रिटायर्ड हो जाता है, वो डिमिनिश हो जाता है, क्योंकि यू नो आप जो आधे कमाने वाले हैं फैमिली में उनको आप कमाने नहीं देते और कोई वजह, वो कोई जायज वजह तो है नहीं।
H-1B वीजे पर भारत से सबसे अधिक संख्या में पेशेवर लोग अमेरिका जाकर काम करते हैं और अपने परिवार के संग रहने के लिए उन्हें H-4 वीजे पर अपनी पत्नी या पति को भी साथ रखने की इजाजत होती है। अगर इस वीजे के तहत काम करने की इजाजत खत्म कर दी गई तो 70,000 से अधिक ऐसे लोगों पर असर पड़ेगा जो H-4 वीजे पर अमेरिका में रहते हैं और उनके पास काम करने का परमिट भी है। इसके अलावा ऐसे लोगों को भी मुश्किल हो सकती है जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 2017 में अमेरिका में 71,000 से अधिक लोग H-4 वीजे के तहत वर्क परमिट लेकर काम कर रहे थे और इनमें से 90% से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। H-4 वीजे के तहत अब तक वर्क परमिट पाने वाले लोगों की कुल संख्या 1,00,000 से ज्यादा है। इनमें से 94% महिलाएं हैं और अधिकतर यानी 93% H-4 वीजे की वर्क परमिट हासिल करने वाली भारतीय मूल की महिलाएं हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब कुछ खबरें भारत से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने रविवार को माओवादियों के साथ हुए कथित मुठभेड़ के बाद अब तक 31 संदिग्ध माओवादियों के शव बरामद करने का दावा किया है। रविवार को पुलिस ने 16 शव बरामद किए थे, जबकि मंगलवार को 15 और शव मिलने का दावा किया है। इधर माओवादी कवि वरवरा राव ने आशंका जताई है कि सरकार सेना के साथ मिलकर माओवादियों के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुट गई है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यह पिछले कुछ सालों में पहला मौका है जब पुलिस ने इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस की C-60 टीम शनिवार से माओवादियों की तलाश में थी और रविवार को छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए गढ़चिरौली के ताड़गांव इलाके में माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। रविवार को पुलिस ने कथित मुठभेड़ के बाद मौके से 16 माओवादियों का शव बरामद किया था, लेकिन घटना के तीसरे दिन यानी मंगलवार को पुलिस ने फिर दावा किया कि इंद्रावती नदी से 15 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। हमने इलाके में नक्सल ऑपरेशन के विशेष आरक्षी महानिरीक्षक शरद शेलार से पूछा कि क्या यह पिछले एक दशक में माओवादियों के नुकसान की सबसे बड़ी घटना है।
हाँ बिल्कुल, तो परसों जो एनकाउंटर हुआ था उसमें से जो नदी है उस एरिया में, तो वहां से 15 डेड बॉडी अभी तक वाटर से रिकवर किया है।
पुलिस जहां अपनी सफलता से उत्साहित है, वहीं 31 माओवादियों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने की इस पूरी घटना से माओवादी समर्थक चिंता में हैं। माओवादी कवि और समर्थक वरवरा राव ने आशंका जताई कि माओवादी संभवतः आदिवासियों के साथ बैठक कर रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें निशाना बनाया।
ये तो हम तो इन्फॉर्मेशन से गए, वो तो बता रहे हैं कि हम टिटिले फोटो से उसका मूवमेंट देखे बोल रहे हैं, मगर हमको ये दिखता है कि एक कोई कोर है, कोई पक्का समाचार से वहां गया है, शायद वहां मीटिंग होते हैं लोग आदिवासियों के साथ, तो जाके उसके ऊपर हमला किए हैं।
हमने वरवरा राव से पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों के मारे जाने का क्या असर होगा।
असर तो ये होगा कि अब वो ये समर में बड़े पैमान पे ऑफेंस लेना चाहता है, राजनाथ सिंह भी वो समाधान 2022 में खत्म करना चाहते हैं, बोलकर जो बताए थे ना। ज्यादातर क्या होता है कि अगर समर है तो माओसी एक ऑफेंस लेते हैं, क्योंकि वही डिफेंस में जाता है। अब ये दिख रहे हैं कि अब गवर्नमेंट ऑफेंस लेना चाहता है अपने डिफेंस में, क्योंकि समर के एडवांटेज लेके।
वरवरा राव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सेना के सहयोग से माओवादियों के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुट गई है।
कारगिल वार में जो रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह यूज किए हैं झारखंड में आदिवासियों के ऊपर, वैसा यूज कर रहे बोलते हमको एक न्यूज आइटम मिला, वैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के सेना की सपोर्ट लेते हुए बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वार का तो तैयारी कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, ये तो दिख रहा है।
वरवरा राव के तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन दो कदम आगे और एक कदम पीछे जैसी लंबी गुरिल्ला लड़ाई का दावा करने वाले माओवादियों के लिए यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए तो अभी जश्न का माहौल है, और गढ़चिरौली में सोमवार के बाद आज फिर से जश्न की तैयारी चल रही है। आलोक पितुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया के खिलाफ अपने दलित चेहरे बी श्रीरामुल्लू को बदामी विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। आखिरी समय में लिए गए इस फैसले से कांग्रेस पार्टी अचंभित नहीं हुई है। आज नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। कर्नाटक विधानसभा के लिए 12 मई को चुनाव होने हैं। बंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आखिरकार बीजेपी ने सिद्धरामैया के खिलाफ बदामी में लड़ने के लिए अपना उम्मीदवार चुन ही लिया, और वो हैं बी श्रीरामलू, जिनको गैर कानूनी खनन घोटाले के गाली जनार्दन रेड्डी का मुंह वाला भाई बुलवाया जाता है। श्रीरामलू वाल्मीकि समाज के हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बदामी क्षेत्र से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसका एक और कारण भी है कि इस क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के मतदाता ज्यादा हैं, हालांकि वो इतने बड़े संख्या में नहीं हैं जितने कुर्बा समाज के या लिंगायत समाज के लोग हैं। श्री रामलू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से कहा, हमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा का आदेश आया कि बदामी से भी नामांकन पत्र दाखिल करें, और हम एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता हैं, तो हम यहां से भी चुनाव लड़ेंगे। ये थे बी श्रीरामलू के शब्द। श्रीरामलू को बीजेपी ने चित्रदुर्गा जिले के मुलकालमुरु क्षेत्र से भी चुनावी मैदान में उतारे हैं। बीजेपी का मानना है कि उस क्षेत्र से नामांकन करने से वाल्मीकि समाज के मतदाताओं पर भारी असर पड़ेगा, जिससे उसको ज्यादा वोट मिलेंगे। दरअसल कांग्रेस पक्ष का भी वही उद्देश्य है कि सिद्धरामैया को मैसूरु जिले के चामुंडेश्वरी क्षेत्र के अलावा उनको बदामी से भी उम्मीदवार बनाना। बदामी में सिद्धरामैया के कुर्बा समुदाय के मतदाता बहुत बड़े संख्या में हैं, लेकिन बीजेपी ने सिद्धरामैया के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है कि वो चामुंडेश्वरी में हारने की संभावना है, तो इसीलिए वो बदामी को भाग गए हैं। लेकिन सिद्धरामैया इसको अलग नजरे से देखते हैं। बागलकोट, विजयपुरा, बेलगावी और उत्तर कर्नाटका के जिलों के लोग मुझ पर बहुत दबाव डाला कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें। फिर कांग्रेस हाईकमांड भी वही बात कही थी, इसीलिए हम यहाँ से नामांकन पत्र दर्ज की है। हमें उनकी बात से कोई मायने नहीं रखती है कि हम दो क्षेत्रों से क्यों लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद गुजरात और वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़े थे। कुमार स्वामी अभी भी दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए ये सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के मुकाबले सांप्रदायिकता का चुनाव है। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। दिलचस्प बात यह है कि सिद्धरामैया के खिलाफ चामुंडेश्वरी में जनता दल सेक्युलर एक बड़ा अभियान चला रही है, और बादामी में बीजेपी सिद्धरामैया के खिलाफ श्रीरामलू जैसे अमीर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में छोड़ा है। इसके क्या मायने हैं? हमने यह सवाल कलबुर्गी के वरिष्ठ पत्रकार टीवी शिवानंदन से पूछा। उन्होंने कहा,
दैट इज करेक्ट बिकॉज़ सिद्धरामैया
ये बात तो हर कोई जानता है कि सिद्धरामैया कर्नाटका में कांग्रेस के चेहरे बन गए हैं, तो बीजेपी का मकसद ये है कि वो सिद्धरामैया को सिर्फ ये दो क्षेत्रों में बांध दें ताकि वो सारे राज्य में पार्टी का अभियान ना करें। ये थे पत्रकार शिवानंदन के शब्द। शिवानंदन की बात कुछ मायने रखती है क्योंकि सिद्धरामैया कांग्रेस के शुभंकर बन गए हैं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
राजस्थान में जोधपुर की अदालत बुधवार को आसाराम बापू के मामले में फैसला सुनाएगी। आसाराम बापू पर दुष्कर्म का आरोप है। कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अदालत जोधपुर जेल में ही फैसले का ऐलान करेगी। पुलिस ने जोधपुर में दफा 144 लागू कर दी है और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस ने जोधपुर में डेरा डाले बैठे आसाराम के समर्थकों को शहर से बाहर भिजवा दिया है। नारायण पारेठ की रिपोर्ट।
कोई 5 साल की लंबी कानूनी कार्रवाई, गवाह सबूत और जिरह बहस के बाद अब अदालत अपने फैसले का ऐलान करेगी। आसाराम बापू पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप है। आसाराम खुद को बेकसूर बताते रहे हैं। वे वर्ष 2013 से जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट में आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में जुर्म साबित होने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अभियोजन पक्ष का कहना था कि इस मुकदमे का फैसला जेल में ही अदालत लगाकर सुनाया जाए, क्योंकि अदालत परिसर और शहर में आसाराम के साधक हरियाणा में राम रहीम जैसे मामले के हालात पैदा कर सकते हैं। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव कुमार व्यास ने बीबीसी से कहा, अदालत ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली है। उनका कहना था कि ये कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है।
कानून व्यवस्था इसलिए साहब के ये अपना पुराना जोधपुर शहर जो पुराना ओल्ड सिटी है, चारों साइड से खुला, तो ऐसे रूटीन में भी जब तारीख कृषि होती है नहीं तो हजारों के भाविक आ जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर हमको मेंटेन करने में बहुत तकलीफ आती है। क्योंकि अच्छा, और दूसरा कि वो हरियाणा वाला जो मामला था उसमें प्रोनाउंसमेंट कोर्ट में किया था तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब हो गई थी। लॉ एंड ऑर्डर से ये साहब देखो, हमारा पुलिस की भी सेफ्टी और सिक्योरिटी थी और जनता की भी सेफ्टी सिक्योरिटी थी। अच्छा, दूसरा के बाबा को जो व्हीकल लाता ले जाता था उसकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी थी। मान लो कल ओवर क्लाउड हो जावे, ओवर लिमिट से भाविक आ जावे तो बड़ी स्थितियां बेकाबू हो सकती।
इस मुकदमे में सुब्रमण्यम स्वामी, राम जेठमलानी और सलमान खुर्शीद जैसे नामी वकीलों ने आसाराम की पैरवी की, लेकिन 11 बार अर्जी लगाने के बाद भी आसाराम को जमानत नहीं मिली। बचाव पक्ष ने 31 गवाह पेश किए तो अभियोजन ने भी 40 से ज्यादा गवाहों का परीक्षण किया। इस दौरान कुछ गवाहों पर हमले हुए, 3 मारे गए और कुछ गवाह पक्षद्रोही हो गए, लेकिन पीड़िता के वकील PC सोलंकी कहते हैं उन्हें न्याय मिलेगा।
पूरा ट्रायल होने के बाद में अब मुझे ये पूरा विश्वास है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस संदेह से परे साबित किया है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और एक्यूज ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं ला पाया है जिससे पता चले कि पीड़िता घटना के दिन नाबालिग ना हो और उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हाईकोर्ट ने डे टू डे हियरिंग के लिए डायरेक्शन दिए, प्रसंज्ञान के 1 साल के भीतर भीतर सारी जो है वो ट्रायल हो जानी चाहिए।
जोधपुर पुलिस के उपायुक्त अमनदीप सिंह ने BBC से कहा, जोधपुर में किसी भी बाहरी तत्व को घुसने नहीं दिया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो अस्थायी जेल भी बनाई जाएगी। पुलिस ने शहर के प्रवेश द्वार पर नाकाबंदी कर दी है। सत्संग और प्रवचन के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा कर लेने वाले आसाराम ने इस मुकदमे के लिए कभी कांग्रेस को तो कभी ईसाई मिशनरियों को जिम्मेदार बताया, लेकिन अब वो लम्हा आ गया है जब अदालत इन आरोपों पर अपना फैसला सुनाएगी। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
आज सचिन तेंदुलकर 45 वर्ष के हो गए। उनको क्रिकेट से संन्यास लिए हुए 5 वर्ष होने को आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खिलाड़ी उनके रिकॉर्डों को तोड़ने के करीब भी नहीं पहुंच पाया है। 15 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन मैदान पर जबरदस्त पारी खेलकर विश्व कप क्रिकेट में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई थी। इत्तेफाक से वो पारी मुझे भी देखने का सौभाग्य मिला था। मैं उस दिन सेंचुरियन मैदान सुबह 8 बजे ही पहुंच गया था। दिन था 1 मार्च 2003। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया था।
सईद अनवर ने जिस तरह बुलेट ट्रेन वाली पारी खेली थी, पवेलियन में मौजूद भारतीय दर्शकों की बॉडी लैंग्वेज बिगड़ गई थी। राज सिंह डूंगरपुर कह रहे थे कि लड़के थके हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने 273 रन बनाए थे और ज्यादातर विशेषज्ञ कह रहे थे कि मैच भारत के हाथ से निकल चुका था। बहरहाल सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग क्रीज पर उतरे। आमतौर से सहवाग इनिंग्स की पहली गेंद खेलते हैं। उस दिन सचिन ने पहले स्टांस लिया। वसीम अकरम की तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया। दूसरे ओवर में शोएब अख्तर गेंद फेंकने आए। शोएब के ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप से 2 फीट बाहर थी, लेकिन उसकी गति थी 151 किलोमीटर प्रति घंटा। सचिन अगर उस गेंद को छोड़ देते तो शर्तिया वाइड होती, लेकिन उन्हें शोएब से अपना हिसाब चुकता करना था। उन्होंने पूरी ताकत से उस पर अपर कट लगाया और गेंद 6 रनों के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर जा उड़ी। शोएब ने फिर अपने मील भर लंबे रनअप से बेन जॉनसन के अंदाज में फिर दौड़ना शुरू किया। इस बार गति थी उससे भी तेज, 154 किलोमीटर प्रति घंटा। सचिन ने इस बार गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ ढकेला। इस शॉट ने शोएब को इतना हतोत्साहित कर दिया कि लगा कि वो अपने बॉलिंग मार्ग पर ही नहीं पहुंचना चाह रहे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। शोएब की अंतिम गेंद को सचिन ने ऑफ स्टंप पर शफल करते हुए महज ब्लॉक भर किया। कोई बैकलिफ्ट नहीं, कोई फॉलो थ्रू नहीं, किसी की शायद जरूरत भी नहीं थी। कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता इससे पहले गेंद मिड ऑन बाउंड्री के रस्से को छू रही थी। अब तक दर्शक पागल हो चुके थे। शोएब अख्तर के चले पर नमक छिड़का उन्हीं के कप्तान वकार यूनुस ने, जब उन्होंने अगले ही ओवर में शोएब को गेंदबाजी से हटा लिया। हालांकि अंततः शोएब ने थके हुए रनर के सहारे खेल रहे सचिन तेंदुलकर को एक शॉर्ट पिच गेंद से आउट किया। लेकिन तब तक सचिन 75 गेंदों पर 98 रन बना चुके थे और भारत जीत की ओर बढ़ रहा था। जब सचिन लंगड़ाते हुए पवेलियन लौटे तो स्टेडियम का एक एक आदमी अपने स्थान पर खड़ा था। मैं भी उनमें से एक था। मेरे ख्याल से उसी दिन 1986 में चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर जावेद मियादाद द्वारा लगाए गए छक्के का बदला ले लिया गया था। और अब नजर दौड़ाते हैं आज के कुल खेल समाचारों पर।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। 2019 में इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप में भारत अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 जून को खेलेगा। आईसीसी के इस महाटूर्नामेंट की शुरुआत 30 मई को होगी, जिसका फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। कोलकाता में हुई आईसीसी की बैठक में 2019 के विश्व कप के लिए कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। हालांकि पूरे कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा 30 अप्रैल तक किए जाने की उम्मीद है। विश्व कप के सभी मैच इंग्लैंड एंड वेल्स के 12 जगहों पर खेले जाने हैं। वर्ल्ड कप में कुल 48 मैच होंगे, जिनमें से 45 ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे। ऐसे में हर टीम को 9 ग्रुप स्टेज मैच खेलने का मौका मिलेगा। वहीं 4 टॉप टीमें नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करेंगी। वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली 2019 विश्व कप के बारे में कहते हैं,
जो वर्ल्ड कप है वो है जून के महीने में, और जून मैं आपको बताना चाहूंगा कि जून में बड़ा चैलेंजिंग होता है क्रिकेट खेलना इंग्लैंड में। और हालांकि इस बार टीमें 10 ही हैं, हर बार की तरह नहीं होगा वर्ल्ड कप बहुत बड़ा, पर चैलेंजिंग होगा। और इंग्लैंड में है पुरानी यादें, भारत ने अपना वर्ल्ड कप 83 में जीता था, इंग्लैंड में ही जीता था। 2011 में इसलिए जीते थे कि तैयारी अच्छी हुई थी, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो अच्छी तैयारी से जब जाएंगे, कम से कम आप ये कह सकते हैं कि टाइटल के लिए अगर कोई टीम दावेदार है फिर से जीतने के लिए वर्ल्ड कप, तो भारत।
और वहीं इंडियन प्रीमियर लीग की मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस घरेलू मैदान पर अब से कुछ ही देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगी। 5 मैच खेलने के बाद भी मुंबई की झोली में सिर्फ 1 जीत आई है। टीम की नज़र इस मैच को जीतकर हैदराबाद से मिली हार का बदला लेने पर होगी। इस सीजन में पिछली बार दोनों टीमों के बीच मुकाबला हैदराबाद में हुआ था, जहां आखिरी गेंद पर हैदराबाद ने मुंबई को मार दी थी। वानखेड़े पर अब तक दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 3 में जीत का सहरा मेजबान टीम के सर बंधा है। हालांकि आंकड़ों में पलड़ा सनराइजर्स हैदराबाद का भारी है, जिन्होंने 11 मैचों में 6 बार मुंबई को मात दी है और 5 बार हार झेली है।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे कपिल देव सिंह, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।